उड़ जा रहे पंछी कि अब यह देश हुआ बेगाना। कल शाम दादी जान की का क्लास था हॉस्पिटल में और दादी ये गीत गा रही थी कि अब ये देश क्या हुआ बेगाना हुआ, अब इस संसार से कोई लगाव झुकाव नहीं, अब हमको अपने देश जाना है क्योंकि ये देश अब हमारा देश नहीं है, ये बेगानों का देश है, परायों का देश है, अपना यहां कोई नहीं। चल उड़ जा रे पंछी, पंछी तू उड़ जा, ये देश हुआ बेगाना। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, जिस घर में रहा, अब वो दिन खत्म हुए, अभी और कब तक रहेगा उस घर में। हे पंछी आज यहां और कल वो वहां, ये जोगी वाला फेरा था, सदा रहा इस दुनिया में किसका आबूदाना, किसका घर घोंसला, यहां हमेशा ही रहा है, यहां जो भी घोंसले बनाए सब छूट गए, सब टूट गए, अगर नहीं टूटे तो तोड़ दिए जाएंगे। इसके लिए देश हमारा नहीं है, ये पेड़, ये डालिया, ये आबो हवा, ये आबूदाना, ये सब हमारा नहीं है। तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई, बारिश में तेरी भीगी काया, धूप में गर्मी छाई, गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई, अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना, कुछ साथ ले जाने से बांट दो और फिर चले जाओ, ये ज्यादा अच्छा है। और बहुत तूने मेहनत की घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, आबूदाना बनाने के लिए, तिनका चुनकर एक नगरी बसाई, बारिश में तेरी काया भी भीगी और धूप में बहुत गर्मी छाई, पर गम न कर कि तेरी मेहनत तेरे काम ना आई, अच्छा है कुछ ले जाने से देखकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। भूल जा, क्या भूल जा, अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली, जग की आग का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली, कौन भला उस बाग को पूछे हो ना जिसका माली, तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। हे पंछी तेरी किस्मत में क्या लिखा है, जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले, जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले, भीगी आंखों से ही उनकी आज दुआएं ले ले, किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। इसलिए उड़ जा रे पंछी, हे पंछी तू उड़ जा, ये दुनिया तेरा घर नहीं है। तो आज बाबा ने कौन सी ड्रिल सिखाई, मुरली है 30 नवंबर 2003 अभी सेकंड में सभी क्या करो, मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, इस स्मृति के स्विच को ऑन कर, और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल। ड्रिल बाबा ने ड्रिल कराई, अच्छा तो मैं कौन हूं, परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, और ये दुनिया अब मेरी दुनिया नहीं रही, ये मेरी दुनिया है, यहां मैं था अब तक, पर अब इससे क्या है, कुदरती वैराग, नेचुरल वैराग। अब ये दुनिया क्या अच्छी नहीं लगती है, क्या लगता है फिर, एक बंधन, एक पिंजड़ा। इसलिए अपने मन को क्या समझाना है, चल उड़ जा रहे पंछी।
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, तिनका तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर, गम ना कर, जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।
घर की स्मृति और उस अवस्था में स्थित रहना आज की ये ड्रिल है। तो हर घंटे में कितनी बार, एक बार अपने आप को याद दिलाना है कि ये मेरा घर नहीं, ये देश कैसा है, बेगाना, पराया है। अब समय है वापस लौटने का, अब समय यहां पर विस्तार करने का नहीं है, अब यहां पर रिश्तों को बढ़ाने का नहीं है, अब यहां का अपने मोह का विस्तार करने का नहीं, अपने लगाव का विस्तार करने का समय नहीं है। समय है इस संसार से परे जाने का। जितना जो विस्तार में फंसा है वो उतना दुखी है, जितना जो मोह में फंसा है उतना वो दुखी है। और ब्राह्मण आत्माओं में सबसे ज्यादा विकार कौन सा होगा? काम नहीं है, काम छूट गया, लोभ भी छूट गया, ईर्ष्या सब में नहीं है। ईर्ष्या कोई कोई में है जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, जिनको बहुत आगे जाना है, यहां पर नाम के क्षेत्र में उनको ईर्ष्या है। सबको ईर्ष्या नहीं है, ऐसे कम है, पर एक कौन सा है जो सभी में है और सबको फंसाया है? मोह है। मोह, मोह सबसे कड़ा विकार है, सबसे कड़ा, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं चिपकना चाहता है, अटैच हो जाना चाहता है। एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है, वहां नए मोह तैयार करता है, अपने आप उसको मोह होने लगता है। तो क्या करे कि ये जो अवस्था है कि मैं परमधाम निवासी आत्मा हूं, ये नेचुरल हो जाए। एक है ये तब रहे जब हम केवल योग में बैठे, पर वैसी ना हो, सहज और नेचुरल इस संसार से वैराग हो। कैसे? कैसे? इस संसार के प्रति दोष दृष्टि धारण करनी पड़ेगी। कौन सी दृष्टि? दोष दृष्टि। इस संसार के दोष देखना साक्षी होकर, जब तक दोष दृष्टि नहीं तब तक संसार से वैराग नहीं। जब तक ये सोचते रहेंगे संसार बहुत अच्छा है, तब तक और मोह में फंसे रहेंगे। इस संसार के दोष को देख लेना। तो आज हम देखेंगे ये संसार कैसा है, क्या इसमें दोष है। तो ये संसार में बहुत सारी बातें हैं, कुछ बातें हम देखेंगे। ये जो दुनिया है एडल्ट्रेशन की दुनिया है, अर्थात मिलावट की दुनिया है। यहां स्थूल वस्तुओं में भी मिलावट है, तो भावनाओं में भी मिलावट है, विचारों में भी मिलावट है, संबंधों में भी मिलावट है। प्रेम भी सच्चा नहीं है यहां पर। प्रेम भी कोई करता है तो साथ में स्वार्थ चलता है। प्रेम कोई सच्चा प्यार नहीं है यहां पर। यह है, कोई है जो कहता है मेरा पति मुझसे सच्चा प्यार करता है, या मेरी पत्नी मुझसे बहुत सच्चा प्यार करती है, या मेरे बच्चों का जो मेरे साथ प्यार है वो सच्चा है? एक चित्र किसी ने भेजा था, इधर एक मां है खड़ी, इधर दो बच्चे छोटे हैं। वो कहता है हाथ पकड़ के मेरी मां, वो कहता है मेरी मां। एक बच्चा कहता है उसके दो हाथ ऐसे है, एक बच्चा कहता है मेरी मां, एक बच्चा कहता है मेरी मां। अब दूसरा चित्र, मां खड़ी है, दोनों बच्चे बड़े हो गए, वो कहता है तेरी मां, ये कहता है तेरी, वो कहता है तेरी मां। पहले कहते थे मेरी मेरी, और बड़े हो गए अभी तो कहते हैं तेरी मां, वो कहता है तेरी मां। ये दुनिया एडल्ट्रेशन की दुनिया, एडल्ट्रेशन अर्थात मिलावट, कंटेमिनेशन, बहुत दोष है इसमें। इतना मत समझना कि ये सारे रिश्ते यहां के बहुत ही बहुत अच्छे, बहुत निस्वार्थ, सब अपने हैं। हम सोचते होंगे सब मेरे हैं, पर वो थोड़ी सोचते हैं हम उनके हैं। ये भी हो सकता है, हम सोचते हैं कि ये सब मेरे हैं, हम इनके इनके लिए सब कुछ करते हैं और मैं सबको अपना समझता हूं, पर वो मुझे अपना नहीं समझते। वो अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपना समझने का दिखावा कर, समझाने का दिखावा कर रहे हैं, मुझे यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए। जैसे कोई कन्या है जिसका जन्म ही एक परिवार में हुआ, बहुत बड़े परिवार में, जॉइंट फैमिली में, पर उस घर की कन्या नहीं है, वो नौकरानी की बेटी, और नौकरानी मर गई, पर वो सारे घर वालों ने उसको अपनी बेटी की तरह पाला बचपन से ही। वो बड़ी हुई और सब उसको उस घर का हिस्सा समझते हैं, मेंबर समझते हैं। वो भी समझती है कि मैं, ये सब मेरा है, पर क्या घर वाले अपने बेटे का रिश्ता उसके साथ करेंगे कभी? नहीं। वो चाहे कुछ भी हो, वो है नौकरानी की बेटी। वो समझती है ये सब मेरे हैं, और उसको बहुत दर्द होता है जब कोई उसको बाहर वाला कोई रिश्तेदार आकर कहता है ये कौन है। वो कहते हैं तो हमारे घर से ही है, घर से नहीं है पर है तो पराई। कितना दिल टूटता है फिर उसका। इस दुनिया में सच्चा प्यार कहीं पर भी नहीं है। जो भी प्यार है वो कैसा है? मिलावट है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, स्वार्थ के लिए मरता है, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। हमने देखा है व्यक्ति मर रहा है और उसको डाल के चले जाते, बाद में कोई देखने नहीं आता। एक बर्न केस था, 80% बर्न जल गई थी, उसके घर वाले डाल के गए, बाद में कभी देखने कोई भी नहीं आया। 6 महीने तक चली वो, कोई नहीं देखने आया। तो ये दुनिया कैसी है? एडल्ट्रेटेड दुनिया है। उसके बाद में सेकंड, ये दुनिया ऑल्टरकेशन की दुनिया है। ऑल्टरकेशन अर्थात झगड़े, इंग्लिश शब्द है ऑल्टरकेशन। झगड़े ही झगड़े हैं यहां पर। कहां पर झगड़े हैं चिमन भाई? कहां कहां झगड़े? झगड़े कहां कहां है? लड़ाई घर घर में झगड़े, व्यक्ति व्यक्ति में झगड़े, ऑफिस ऑफिस में झगड़े, ऑफिस के अंदर झगड़े, समाज में झगड़े, मोहल्ले में झगड़े, देश देश के झगड़े। वो तो सबसे बड़ा झगड़ा है, स्वयं के विचारों से ही झगड़े, मन में ही झगड़े। एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश से, ये नदी हमारी, वो कहते ये नदी हमारी, ये हमारा राष्ट्र, ये तुम्हारा। तो ये संसार झगड़ों का संसार है। इसके लिए अभी संसार से वैराग, उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। अब ऐसे देश में चलना है, ऐसे देश की परिकल्पना करना है जहां पर कोई झगड़ा नहीं है, जहां कोई सीमा नहीं है। ये संसार तो सीमाओं से बटा हुआ संसार है। एक ऐसी दुनिया भी थी क्या, अखंड, कि जहां पर कोई खंड नहीं थे, अलग अलग, जो आराम से कहीं पर भी जा सकते हैं, इधर से उधर उधर से उधर, वहां कोई बंद इस तरह की बातें नहीं थी। ये तो हमने बनाया है ना, ये थे क्या पहले? ये अमेरिका, ये पाकिस्तान, ये भारत, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये वो ये वो, ये सब मनुष्य मैन मेड है सारा, ऐसा थोड़ी था समाज। तो ये झगड़ों का संसार है। मैं जन्म करता कौन है? मैं। तो ये झगड़ों के संसार का चिंतन करना है कि यहां पर क्या है, झगड़े ही झगड़े, इसलिए इससे वैराग। इसलिए आज की ड्रिल क्या है, मैं परमधाम निवासी हूं, ये मेरी दुनिया नहीं है, ये मिलावट की दुनिया है, ये झगड़ों की दुनिया है, मैं इससे अलग हूं। जब तक संसार के दोष का चिंतन नहीं किया जाता तब तक उससे वैराग नहीं आता। जब तक जिस व्यक्ति में मोह है, क्या किया जाए? अगर किसी में मोह है, आ है उसको बा से बहुत मोह है, क्या करना चाहिए? आ और बा दो व्यक्ति है, आ को बहुत मोह है बा से, कैसे छूटे मोह से? सोचे ये बाबा का बच्चा है, ये भी प्यारा बच्चा है, और मोह बढ़ेगा, उससे भी कुछ नहीं होता है। झगड़ा झगड़ा करना बड़ा खतरनाक है। अगर दो व्यक्ति में मोह है और उनमें अगर झगड़ा होता है, और झगड़ा जब खत्म होता है तब मोह और बढ़ जाता है। इसके लिए बुराई मन ही मन, कम्युनिकेशन जब कट कर दो, ठीक है, 15 दिन कम्युनिकेशन कट करने के बाद 16वें दिन मोह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सदा के लिए कम्युनिकेशन कट करो, फिर बीच में अचानक याद आती है, बीच में अचानक फोन कॉल, बीच में अचानक बातें करते हैं वापस, और तब तो मोह और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 10 दिन खाना नहीं खाता, 11वें दिन इतना खाता इतना खाता इतना खाता, उससे तो कभी लगता है वो पहला ही ठीक था जो कंट्रोल खा रहा था, पर बीच में जो गैप आ गया उसको लगता कितना मेरा लॉस हो गया, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनी बीच बीच में और मैंने सब छोड़ दी जो कभी बनने वाली नहीं है, बाद में आज नहीं छोड़ूंगा। कभी कभी उल्टा प्रभाव हो जाता है। मोह से छूटना इतना आसान नहीं है, मोह चलता है जीवन भर, उसके अलग अलग रंग रूप आते रहते हैं सामने, और जो जो मेथड व्यक्ति करता है वो एक दिन पाता है फेल हो गई है। जो भी मेथड मोह से छूटने के लिए की जाती है एक दिन ये पता चलता है फेल, वो लंबा समय नहीं चलती है। इसके लिए मोह एक ऐसा कड़ा बंधन है जिसके लिए नित्य नए प्रयोग करने होते हैं, क्योंकि कोई भी एक मेथड लंबा समय नहीं चलती है मोह के लिए। तो यह दुनिया कैसी है? झगड़ों की दुनिया है। इसलिए इस दुनिया से वैराग, और बीच बीच में अभ्यास करना है, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं कहां का हूं? परम धाम का निवासी हूं, मेरी दुनिया वो है, ये मेरी दुनिया नहीं है। उसके बाद में तीसरा, ये जो दुनिया है वो अफ्लिक्शन की दुनिया है। अफ्लिक्शन अर्थात संताप, अर्थात पीड़ा, दर्द की दुनिया है ये। यहां हर व्यक्ति दर्द में, हॉस्पिटल में जाके चक्कर लगाओ, आ ओ बचाओ, आह दर्द, आवाज ही सुनाई देती है। हाँ, उठते ही डॉक्टर लोगों को और नर्स लोगों को पहली आवाज आती है, आ शरीर जिसका इतना सौंदर्यकरण किया जाता है, इतना सजाया जाता है, जाकर देखो उधर डायलिसिस पेशेंट को कैसे तड़पते हैं, जाकर देखो कैंसर पेशेंट को, जाकर देखो टीबी पेशेंट्स को, जाकर देखो सरकारी अस्पतालों में एक एक बेड पर दो दो पेशेंट, जगह नहीं है। जाकर देखो सरकारी अस्पतालों में कैसी लंबी लाइन लगी है, 300 की ओपीडी है, अपॉइंटमेंट्स मिलती नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास, कैसी बुरी हालत है, लकड़ी हड्डियां हड्डी दिख रही है, मांस है ही नहीं, कहीं नहीं कुछ रहा। वृद्धाश्रम में जाकर देखो, अनाथ आश्रम में जाकर देखो, वैराग आएगा। शमशान में जाकर बैठना है बीच बीच में, मंथली वीकली विजिट, एक हफ्ते में एक बार तो जाके देखते रहना चाहिए, कैसी चिता जल रही है, आग की लपटे उठ रही है, कहां गया उसकी शानो शौकत। चार चार मोबाइल रखता था, अभी चिता जल रही है, कहां है मोबाइल? कुछ नहीं रहा, सब गया। कितनी अकड़ थी, कहां गई अकड़? कुछ नहीं रही। तो ये संसार अफ्लिक्शन का संसार है। अफ्लिक्शन अर्थात बहुत पीड़ा, बहुत संताप, बहुत दर्द, हर्ट, वुंड, घाव। हर व्यक्ति घायल है यहां पर। क्या ऐसा भी कोई संसार आएगा जहां पर हर व्यक्ति खुश रहेगा? ऊपर से सभी खुश तो दिखते हैं पर अंदर से सभी दर्द में है। बहुत दर्द है हर एक के दिल में, और हर एक अपने दिल को, दर्द को छिपा के रखता है, डबल लॉक, किसी को पता ना चले मेरा कितना दर्द है। उसके बाद में यह संसार एक्यूजेशन का संसार है। एक्यूजेशन अर्थात एक दूसरे पर क्या करते हैं, कालिक पोतते हैं, कलंक लगाते हैं, ब्लेम करते हैं, दोषारोपण करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग, नुक्ताचीनी, ब्लेम, जहां देखो वहां। ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई महकमा, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई स्थान, ऐसी कोई घर, ऐसा कोई ऑफिस दफ्तर नहीं है जहां पर लोग ब्लेम नहीं करते एक दूसरे पर। सतयुग में ऐसा होगा क्या? राजा बोलेगा तुमने ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, या एक देवता और दूसरे देवता का झगड़ा, या दो देवियों का झगड़ा हो गया, एक रूठी हुई है दूसरे से, दास दासियों को डांटेंगे तुमने ये गिराया क्यों, अभी तक पोछा क्यों नहीं लगाया, राजमहल का दूध क्यों गिरा दिया, फल कहाँ है मेरे, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, अब तक क्या कर रही थी। ऐसा हो गया क्या सतयुग में? प्रकृति सब अपने आप होगा। इसके लिए मैं परमधाम निवासी हूं, इस दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इस दुनिया को तुमने तलाक दे दिया है। चौथा क्या, ये दुनिया कौन सी दुनिया है? एक्यूजेशन की दुनिया है। एक दूसरे पर बहुत कलंक लगाते रहते हैं सब यहां पर, इसीलिए इस दुनिया से वैराग, इसलिए दुनिया अच्छी नहीं लगती है। ये नेचुरल स्टेज हो वैराग की। वो बाबा ने कहा है ड्रिल करो सारे दिन भर। ड्रिल मतलब ये नहीं खाली हम योग में बैठे, मैं परमधाम निवासी हूं, नीचे आने के बाद सबसे मोह, सबसे लगाओ, ये वाली फिर नीचे का निवासी हूं। ऐसी वैराग की नेचुरल अवस्था अर्थात जिसमें अच्छा ही नहीं लगता है। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं छोटे, उनको कहो चॉकलेट खाओ, वो कहते हैं मुझे शुगर अच्छी नहीं लगती। एकदम छोटा है बच्चा, वो कहता है मुझे शुगर अच्छी नहीं लगती, मुझे कॉफी चाय शक्कर नहीं डालना है उसमें। 7 साल का बच्चा है, वो कहता है शक्कर मुझे अच्छी नहीं लगती। नेचुरली उसको अच्छा नहीं लगता है, वो जो भी हो पहले कोटा पूरा करो या अब, पर उसको नेचुरली अच्छा नहीं लगता है, बचपन से ही अच्छा नहीं लगता है। जैसे कोई एक बाप है जिसको डायबिटीज है और जिसको शुगर अच्छी नहीं लगती है, और शादी हुई, बच्चा छोटा सा है, तलाक हो गया, चले गए, अलग हो गए, 10 साल के बाद में मिले, वो अपने बच्चे से बात करता है, और बात करते करते बच्चा एकदम कहता है कि डैडी मुझे शुगर अच्छी नहीं लगती है। उसे एकदम से याद आता है मुझे भी तो नहीं अच्छी लगती थी बचपन में। अजीब सा कनेक्शन जुड़ता है उस बच्चे के साथ, बाप का बेटे का। वो सोचता है देखो ये मेरे ऊपर गया हुआ है। रहा उसके साथ पर आज मिला 10 साल के बाद तो एकदम से कनेक्शन जुड़ा, ये तो सारे मेरे ही संस्कार इसमें है। तो नेचुरल वैराग हो, खींचा तान के वैराग नहीं। ये संसार छींची है, मुरली में आया, क्या करे, इतनी परेशानी हो गई पढ़कर। आता तो नहीं और ही मोह, हमारा तो इतना मोह है ऐसा लगता है इसको थोड़ा मुरली में। वो जो बातें जब आती है जो हम कर रहे हैं और बाबा कहते नहीं करना है, ऐसा कहते बहन जी उसके ऊपर ज्यादा रुके ना, बस आगे बढ़ जाए। जब भी जो हम नहीं कर रहे हैं और वो मुरली में आती है तो ऐसा लगता है वो आगे बढ़ जाए फटाफट, क्योंकि दूसरी भी तो पॉइंट्स है ना, आज उस पर फोकस करो, उसमें फोकस मत करो क्योंकि हमारे वहां पर गड़बड़े। फिर ये दुनिया, अगला पांचवा कंफ्यूजन की दुनिया है, फिफ्थ वर्ल्ड ऑफ कंफ्यूजन। ये दुनिया क्या है? हर जगह कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन है। ऐसा कोई घर है जहां कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा कोई मन है जहां कंफ्यूजन नहीं है। हर व्यक्ति सुलझा हुआ नहीं है, उलझा हुआ है। माया ने सबको उलझा के रखा है, कोई संबंधों में उलझा है, कोई अपने काम में उलझा है, कोई त्योहारों में उलझा है, कोई विस्तार, कोई दूसरों को उलझाने में उलझा हुआ है। दूसरों के लिए ऐसा षड्यंत्र बना रहा है डेली कि खुद ही उस षड्यंत्र में उलझा हुआ है। ये उलझन की दुनिया है, बहुत ही कंफ्यूजन है यहां। यहां क्या करना किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। बचपन से ही बच्चे को ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती है, बाद में उसको समझ में नहीं आता क्या बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, क्या बनोगे, क्या बनोगे मुन्ना। पापा कहते बनो डॉक्टर, मम्मी कहती, वो गीत है एक ऐसा, क्या बनोगे। मम्मी कुछ कहती है, वो कहती है दोस्त कुछ कहते हैं, और मैं अपना तो कुछ और ही चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं चित्रकार बनूं, जो कहते अरे इसमें तो कोई फायदा नहीं है, इसमें क्या कमाई करोगे तुम, मेरी जो चाहना है वो तो इसको पता ही नहीं है। जैसे एक सर्जन है जिसने अपना अनुभव सुनाया, वो 75 उम्र का हो गया सर्जन, इतना वर्ल्ड फेमस सर्जन, ऐसा सर्जन कि उसने जो जो ऑपरेशन किए सब सक्सेसफुल, सर्जरी के मतलब वो टॉप मोस्ट, केवल उस देश का नहीं पूरे विश्व का। 60 साल का हुआ, सब लोगों ने कहा नहीं नहीं आप कैसे रिटायर हो सकते हो, आप और काम करो, आपकी बहुत आवश्यकता है इस देश को, मरीजों को। तो उन्होंने कहा ठीक है, और 15 साल काम किया और बहुत सारे ऑपरेशंस किए। जब 75 साल का हो गया, 75 साल का, तो फेयरवेल पार्टी अरेंज की गई, और फेयरवेल पार्टी में बैठ के वो रो रहा था। उसको लोगों को लगा शायद दुख हो रहा होगा कि मैं प्रोफेशन से अभी रिटायर हो रहा हूं। फिर उनका भाषण देने का समय आया और उन्होंने भाषण देना चालू किया। उन्होंने कहा मेरे जीवन के, हाँ थोड़ा थोड़ा, मेरे जीवन के ये 50 साल मैंने जो बिताया एज ए सर्जन, मुझे जबरदस्ती सर्जन बनाया गया, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, माता डॉक्टर थी, उन दोनों ने जबरदस्ती मुझे डॉक्टर बनाया। मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं था, मुझे तो संगीतज्ञ बनना था, म्यूजिशियन, और मैंने अपने 50 साल रोबोट की तरह काम किया, और मेरा दिल तो म्यूजिक में था। कितना अच्छा होता मैं कोई म्यूजिशियन होता, हो सकता था मैं किसी सड़क पर बैठ के कोई एक तारा बजाता था, माना कि मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलती पर मैं खुश तो होता। इतना साल मेरे यहां पर मेरे अंदर कोई खुशी कभी थी ही नहीं, मैं दुखी होकर मर जा रहा हूं अभी आज। ये ऐसे एक सर्जन ने सुनाया अपने जीवन का अनुभव, क्योंकि उसको आंतरिक इच्छा कुछ और थी ना, वो दब गई, और फिर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करता गया करता गया करता गया, पर वो इच्छा अंदर से थी कि मुझे तो ये करना था और वो कर ही नहीं पाया। तो ये संसार कैसा है, कंफ्यूजन का संसार है ये। इसके लिए संसार के कंफ्यूजन को देखते रहना है साक्षी होकर। अभी भी तो है। उसके बाद में ये जो संसार है, ये संसार डिसेप्शन का संसार है। डिसेप्शन अर्थात धोखा। यहां हर जगह पर धोखा है, सभी धोखेबाज है। यहां कोई है जो धोखा नहीं देता? ऐसा कोई बेटा होगा जिसने कभी धोखा ही नहीं दिया मां बाप को? कभी ना कभी तो देता ही है धोखा। ऐसा कोई पति है जिसने अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया? स्थूल में नहीं दिया पर सूक्ष्म में तो दिया है, विचारों में तो दिया है, कभी ना कभी तो कुछ तो किया है, विचारों में किया या कहीं पर किया या भावनाओं में तो धोखा दिया है। ये संसार ही धोखे का है, सब जगह धोखा ही धोखा है, ऑफिस, घर, पॉलिटिक्स, हर जगह पर। जैसे वो बताया था ना, एक पॉलिटिशियन का बेटा उससे कहता है पिताजी मुझे बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, आपसे भी अच्छा। वो कहता चलो तुमको पॉलिटिक्स के नियम सिखलाता हूं। क्या है, सीढ़ी लगाता है, कहता है चढ़ो ऊपर, तो वो चढ़ने लगता है, ऊपर चढ़ता है, पिताजी एक लात मारकर सीढ़ी को गिरा देते हैं और धड़ाम से नीचे गिरता है, हड्डी टूट जाती है। पिताजी ये क्या है? वो कहते यही तो है पॉलिटिक्स, पहला नियम किसी पर भी विश्वास मत करना, अपने बाप पर भी नहीं। तो ये संसार कैसा है, धोखे का संसार है। इसके लिए इससे वैराग्य, सोचना है, इस संसार को साक्षी होकर सोचना है, वो सारे व्यक्तियों को सामने लाओ जो हमारे जीवन में आए और गए, आए और गए या है वर्तमान में, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हर एक, बचपन से लेकर अब तक या द्वापर से लेकर अब तक। गुरु भी ले लो, गुरु भी तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ करता है, इच्छा टूट जाती है, दुख हो जाता है, बहुत दुख होता है उसको मिलकर। जैसे एक बहुत बड़ा राइटर था, वो इतना अच्छा लिखता था, इतना अच्छा लिखता था, और कुछ लोग इतने प्रभावित हो गए उसके लिखने से। एक बार दो कन्याएं कॉलेज की, जो उससे उसकी बहुत बड़ी फैन थी, उससे मिलने गए, पर उससे जैसे मिले उसने ऐसा व्यवहार किया उनके साथ कि बाद में वो एकदम नाराजी हो गई। अब तक उसने जो कुछ सुना था सब फाड़ दिया उसका। उसने कहा चलो यहां से बाहर निकलो, मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे मिलने के लिए, किसने तुमको अंदर आने दिया, वगैरह वगैरह इस तरह की रूड बिहेवियर किया, वो नाराज हो गई। बस वहीं तक था उनका सम्मान, उस दिन से समाप्त। तो यह संसार कैसा है? डिसेप्शन का संसार है, यहां हर जगह पर डिसेप्शन ही डिसेप्शन है। इसके लिए मैं क्या हूं, सारे दिन भर अभ्यास, ये उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ बेगाना, मैं परमधाम निवासी हूं, यहां का नहीं हूं, मैं वहां का हूं, और हूं भी तो वहां से फिर मुझे उधर आना है, नई दुनिया में आना है। इसके लिए बाबा ने कहा एक आंख में मुक्ति रखो और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखो। ये आंख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा, इधर ये और उधर वो, उनका ही चिंतन करते रहना है। और इस संसार से आंतरिक वैराग हो, सूक्ष्म वैराग, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि दूसरों के सामने है तो वैराग, और अकेले कमरे में गए तो क्या खाऊं और क्या नहीं, और क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा वैराग नहीं चाहिए। वैराग नेचुरल स्टेज ऑफ वैराग, उसके लिए सूक्ष्म चिंतन करना पड़ेगा इस संसार के धोखे का। उसके बाद में ये जो संसार है एक्सप्लॉइटेशन का संसार है, एक्सप्लॉइटेशन अर्थात प्रताड़ित करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने मतलब के लिए किसी को यूज करना, और काम होने के बाद में दूध से मक्खी निकाल के कैसे फेंक देते, वैसे फेंक देना। जब तक काम का है तब तक ठीक, काम हुआ तो आउट। स्वार्थ, एक्सप्लॉइट करना, प्रताड़ित करना दूसरों को, अपने मतलब के लिए प्रयोग करना, यूज करना। एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं ना, साहूकार गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, हाँ उल्टा भी हो सकता है। आजकल कोई भी किसी को भी एक्सप्लॉइट करता है। किसी जमाने में वो एकलव्य था जिसने गुरु को अपना अंगूठा काट के दे दिया था, आजकल के शिष्य तो गुरु का ही अंगूठा काटने में पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे एक्सप्लॉइटेशन है। यहां पर साक्षी होकर रोज इस संसार के बारे में सोचना है तो ही वैराग मेंटेन रहेगा। खाली एक पॉइंट से वैराग नहीं आएगा, दुनिया का विनाश होने वाला है। हमारे पास एक ही पावरफुल पॉइंट है विनाश वैराग की, कौन सी? ये तो एकदम ठंडा हो गया है, विनाश होगा नहीं होगा, आजकल तो कोई विनाश की तो चर्चा ही नहीं है कहीं, कोई भी विनाश की बातें ना पूछता है ना करता है। कोई पूछता है कब होने वाला है संसार का विनाश? कोई मतलब पहले कैसे था, चर्चा चालू थी ना 1970s 80s में, यज्ञ में चर्चा चलती थी कि विनाश विनाश विनाश। अभी है क्या? अभी किसी को विनाश से कोई लेना, सब अपनी अपनी सेवाओं में और अपने अपने काम में व्यस्त है। पर वैराग का आधार विनाश नहीं है, वैराग का आधार विनाश नहीं है, वैराग का आधार वर्तमान स्थिति संसार की क्या है, उसको बड़ा सूक्ष्मता से स्टडी करना है, हर चीज को स्टडी करना है जो आसपास हो रही है, कि कैसे मैं इन सब से अपने आप को डिटैच करूं। उसके बाद में ये जो संसार है फ्रस्ट्रेशन का संसार है, फ्रस्ट्रेशन अर्थात कुंठा। एक होता है डिप्रेशन, एक होता है फ्रस्ट्रेट हो जाना, जैसे कोई व्यक्ति काम करता है, जैसे हमारा एक मित्र था, उसको डॉक्टर बना, फिर पीजी किया, फिर कार्डियोलॉजिस्ट बना, और कार्डियोलॉजिस्ट में मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट, पर इतने पेशेंट्स इतने पेशेंट्स के ही हम हॉस्पिटल में देखते देखते उसको फ्रस्ट्रेशन हो गया, मुझे नहीं करना है ये, छोड़ दिया उसको, दूसरी एग्जाम दी और दूसरी एग्जाम में उसको ऑर्थोपेडिक्स मिला, फिर हड्डी का डॉक्टर बना, वो 6 महीना किया, फिर फ्रस्ट्रेशन हो गया, उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी एग्जाम दी, फिर स्किन मिला, फिर स्किन स्पेशलिस्ट बना, पर स्किन में तो कोई मजा ही नहीं है, बैठो और पेशेंट की चमड़ी देखो और दवाई लिखो, वो एक्साइटमेंट कहाँ है, उसको भी छोड़ दिया। फिर अभी अपना जो गांव है ना, वहां पे टॉप मोस्ट लीडिंग प्रैक्टिशनर है जनरल प्रैक्टिशनर, कोई स्पेशलिटी नहीं, जनरल, सर्दी बुखार सब कुछ देखने वाला सब बड़ा बड़ा छोड़ दिया, अब वो कर रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन का संसार है, एक अजीब सी बेताबी, अजीब सी बेचैनी रहती है व्यक्ति के मन में। तो उसके बाद में ये ग्रेटिफिकेशन का संसार है, ग्रेटिफिकेशन अर्थात भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग विलास का संसार है। यहां तपस्या नाम की कोई चीज कहीं नहीं है, हरेक इंद्रिय सुखों के पीछे पागल है, दीवाना है, मतवाला है, बस ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय सुख मिले, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधापूर्ण जीवन हो, कंफर्टफुल लाइफ हो, बस इससे ज्यादा और कोई किसी को कुछ मतलब नहीं है। और उसके लिए दूसरों को कितनी भी दुख हो जाए, परेशानी हो जाए, चलेगी, पर मुझे सब कुछ ठीक रहना चाहिए मेरा। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफाई करना अर्थात इंडल्ज, भोग विलास में डूब जाना, ऐसा यह संसार है, इसलिए इस संसार से वैराग। यहां कोई बात ही नहीं है जीवन के अंतिम रहस्य की, अनंत की खोज की, अनंत की प्यास की, कोई चर्चा नहीं करता इस तरह की, सब चर्चा करते हैं केवल आज ये खाया कल वो खाया, आज ऐसा किया कल वो पहना, आज इसकी शादी कल उसकी शादी, इसकी शादी में ये पहनना है उसकी शादी में वो पहनना है, ये खरीदना है वो करना खरीदना है, यही चर्चा है संसारों में, और कोई चर्चा है क्या? कुछ नहीं, ये ग्रेटिफिकेशन का संसार है। उसके बाद में हेलुसिनेशन, ये हेलुसिनेशन का, हेलुसिनेशन अर्थात जो कहा था उस दिन ना मृग मरीचिका, भ्रम लग रहा है पर है नहीं, हेलुसिनेशन साइकेट्रिक पेशेंट्स को होता है, आवाजें सुनाई देती है रात को, व्यक्ति है नहीं फिर भी आवाज, व्यक्ति है नहीं दिखता है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, जो है नहीं वो भास होता है, यहां पर वहां पर सुख है ही नहीं पर व्यक्ति को लगता है वहां सुख है, सोचता है ये इस व्यक्ति से संबंध जोड़ू, ये इससे दोस्ती कर लूंगा ना तो बहुत खुशी होगी, पर दोस्ती करने के बाद खुशी नहीं आती है। जो शादीशुदा है उसको लगता है वो लोग कितने सुखी है जिनकी शादी नहीं हुई है, और जिसकी शादी नहीं हुई है वो जब लोगों को घूमते देखता है हाथों में हाथ डालकर, उसको लगता है मेरा कब नंबर आएगा, जिसका तलाक है वो सोचता है कोई और अच्छा मिल जाए मेरे टाइप का, ये तो मेरे टाइप की नहीं थी, कोई दूसरा अच्छा वाला मिल जाए, कोई तो होगा जो मेरे लिए बना है, वो कब आएगी आएगा, उसकी भी आश, ये आश टूटती थोड़ी है, आश नहीं टूटती, बहुत ज्यादा आशा है संसार में, इसके लिए कहा है कभी कभी एक दूसरा चिंतन भी है आशा के विरुद्ध का, कि आशावादी नहीं होना चाहिए, हाँ, क्योंकि वह आशा दुख देती है, व्यक्ति दुखों में डूबता है फिर भी आश नहीं छोड़ता है कि अभी कभी ना कभी सुख मिलेगा, जबकि सुख मिलने वाला ही नहीं है वहां पर। बाबा ने तो कहा है ना इस दुनिया में शांति है ही नहीं, फाइनल स्टेटमेंट बोल दिया है, तुम जो करना है कर लो, इस दुनिया में शांति है ही नहीं, शांति शांति धाम में है या तो सुख धाम में है, बोला है तो ये हेलुसिनेशन की दुनिया है, इसके लिए संसार से वैराग। उसके बाद में ये जो संसार है इम्परफेक्शन का संसार है, यहां परफेक्ट कुछ भी नहीं है, हर एक में कुछ ना कुछ दोष है, टेढ़ा मेढ़ा है, परफेक्ट है क्या किसी में? किसी में कुछ परफेक्शन नहीं है, इसलिए इस संसार से वैराग। इसलिए चिंतन करना है मैं परमधाम निवासी हूं, जैसे कल दादी जानकी ने हॉस्पिटल में कहा, ये पंछी उड़ जा, ये देश बेगाना हुआ, जो गीत में भी सुना। यह संसार जस्टिफिकेशन का संसार है। हर एक व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करना चाहता है कि मैं राइट हूं, वो कहता है मैं राइट हूं। एक तो दूसरा ब्लेम करता है, और जिस पर ब्लेम किया जाता है फिर वो अपने आप को बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम जो मेरे बारे में कह रहे हो ये गलत है, तुमने जो आरोप लगाए वो झूठे हैं। वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, वो और ब्लेम लगाता है। जितना ज्यादा जस्टिफाई करो उतने ज्यादा ब्लेम लगाते हैं। ये सारे संसार में यही चल रहा है, सारी कंपनियां सब सब जगह देखो क्या हो रहा है, जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, जिद जिद करते हैं। पर ये वो संसार है, इसके लिए तो झगड़े हैं। उसके बाद में ये हदों का संसार है, लिमिटेशन। यहां हदें है, हर चीज में हद है, हर परिवार में हद है। कोई ऐसा बहुत व्यापक सोचे, विश्व के लिए सोचो, ऐसा है क्या? जाओ किसी के घर में, क्या सोचता है? मेरी पत्नी ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, बस। पड़ोसी ठीक रहे, ऐसे कोई सोचता है? हो गए कोई दो तीन समाज सेवक जो सोचते हैं समाज का कल्याण हो, या हो गए कोई रेयर ऐसे जो सोचते हैं मेरे देश के लिए मेरा जीवन है? बहुत कम, बाकी तो सब कुछ और चीजों में ही लगे हुए हैं। ऐसे भी पर बहुत कम है, या हदों का संसार है, इसलिए इससे वैराग्य। उसके बाद में मिसकंसेप्शंस, या संसार में बहुत सारी भ्रांतियां है, मिसकंसेप्शन है जो सत्य नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ है यह संसार। सुपरस्टिशन का संसार है, अर्थात अंधश्रद्धा का। यहां हजारों अंधश्रद्धाएं है, हजारों। हमको लगता है हम इस दुनिया में रहते यहां बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा नीचे जाओ, इंटीरियर में जाओ, गांवों में अब भी किस तरह से जी रहे वहां लोग, वो आदिवासी या थोड़े गांव में, वो सारी धारणाएं, उनकी जो मान्यता है अब भी वैसी की वैसी है, टूटी नहीं है कुछ भी। अब भी बेटी अगर जन्म ली तो दुख होता है, अब इसका क्या करना है? पांचवी भी बेटी हो गई फिर कितना दुख होता है लोगों को। सब अंधश्रद्धा का यह संसार है। उसके बाद में विघ्नों का यह संसार है, ऑब्स्ट्रक्शन। यहां हर जगह विघ्न ही विघ्न है। उसके बाद में पेसिमिज्म का यह संस्कार है, पेसिमिज्म अर्थात निगेटिविटी। जहां देखो वहां निगेटिव चिंतन है, निगेटिव चर्चा है, निगेटिव बातें हैं, निगेटिव वर्णन है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, निगेटिव 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 है। बहुत कम स्थान है जहां पॉजिटिव चर्चा चालू है, कुछ आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाएं, कुछ लोग, बाकी सब छोड़ के निगेटिविटी है। फिर यह संसार क्वेश्चन का संसार है, हर जगह प्रश्न ही प्रश्न है, ढेर सारे प्रश्न, किसी के पास उत्तर नहीं है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, और परेशान है उत्तर की खोज में, जो कभी मिलता नहीं है, कभी नहीं मिलता उत्तर, ऐसे सवाल उनके मन में है। फिर यह संसार रिपल्शन, घृणा का संसार है, एक दूसरे से नफरत करते हैं लोग। कई हैं लोग जो बहुत प्यार करते हैं, अगर प्यार करने वाले हो, कभी कभी हमको लगता है ये जो दिखाते हैं ना कुछ प्यार करते हैं, आशिक माशूक, ठीक है करो, कम से कम प्यार तो कर रहे हैं, क्योंकि संसार में तो नफरत ही नफरत है, एक दूसरे को मारने को उतारू है लोग, कम से कम वो ठीक है, प्यार तो है, सोचते तो एक दूसरे के बारे में। वो भी इतना आसान नहीं है, सदा का नहीं है, वो भी अल्पकाल का है, पर चलो एक बूंद तो है प्यार की घृणा के सागर में। ये संसार घृणा का सागर है, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऐसा साइकोलॉजी में कहा गया है कि हर पति कम से कम चार बार अपने जीवन कहानी जीवन में सोचता है अपने पत्नी को मार दूं। ऐसा रिसर्च हुआ है बहुत सारे पति पे, किया नहीं उन्होंने, सोचा है, विचार आया है, चार बार पूरे जीवन काल में मिनिमम। वो नहीं किया अभी तक रिसर्च, उसको नहीं किया है, आप कर लो। हाँ वो तीर वाली कहानी, तो हर बार इतना इरिटेट हो जाता है कि सोचते हैं आज तो इसको मार दूंगा। फिर बहुत सारी सामाजिक ये वो है, उसका अपना भी तो प्यार है, तो बच्चे हजारों चीजें, पर सोचा तो है उसने, शायद बताया नहीं होगा, किया तो बिल्कुल नहीं, पर अब विचार तो आया एक बार। तो ये संसार घृणा का संसार। उसके बाद में सुपरस्टिशन बोल दिया, फिर टेंशन, और लास्ट में वायलेशन। ये संसार टेंशन का संसार है। ऐसा कोई है जिसको तनाव नहीं है? विनोद भाई, तनाव मुक्त संसार में है क्या? होने वाले हैं, हर एक को कुछ ना कुछ एक अजीब सा टेंशन रहता है, अजीब सा तनाव रहता है। काम वाली नहीं आई, टेंशन। बच्चा स्कूल से लेट आया, टेंशन। मार्क्स कम आए, फेल नहीं हुआ, मार्क्स कम आए, टेंशन। माँ बाप को टेंशन, बच्चे की स्कूल एग्जाम है, टेंशन, एग्जाम उसकी है, टेंशन इनको है। हाँ, बच्चा बहुत ज्यादा खुश है, बच्चे को तो कोई चिंता ही नहीं है, बच्चे को तो कोई चिंता ही नहीं है। एक पिता ने उसके बेटे को कहा कि तुम अगर पास हो जाओ ना, मैं तुमको साइकिल लेके दूंगा। और बेटा अपना पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो जब रिजल्ट आया तो बच्चा फेल। तो मैं, तुम फेल क्यों हो गए? वो कह रहा था मैं साइकिल के बारे में सोच रहा था दिन रात। और लास्ट में वायलेशन, वायलेशन अर्थात उल्लंघन। या हर व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है, चाहे ट्रैफिक, चाहे नियम मर्यादाएं, सामाजिक अनुबंध, सबका कहीं ना कहीं नियम का उल्लंघन कर रहा है। तो ये सारा संसार इस तरह से, ये तो कुछ बातें बताई, 21 ऐसी हजारों बातें हैं संसार की। इसलिए क्या करना है, इस संसार से वैराग, दोष दृष्टि और चिंतन करना है, मैं इस संसार का नहीं हुआ, देश हुआ पराया, मैं परम धाम निवासी हूं। यह आज सारे दिन भर का एक एक घंटे का अभ्यास है। अपने आप को यहां से हटा के सीधा ऊपर स्थित कर देना। ओम शांति।
चल उड़ जा रे पंछी के, अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी, जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली, जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, हो ना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के, अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी।